मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। आज 14 नवंबर 2018 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और फ्रेंड्स, आप सबके साथ ही मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं अपने उन दो नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 3 से 17 मार्च के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं मुकेश कुमार मंडल मधुबनी बिहार से और सजिया मंसूरी आपका गांव है लोंगी कला जिला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से। तो मुकेश और सजिया आप दोनों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय के रूप में मैं बात करना चाहूंगा थोड़ा सा कि भारत के लिए जो एशियाई देश है और खासकर पूर्वी एशिया कह लीजिए वो क्यों महत्वपूर्ण है, थोड़ा सा हम इस पर बातें करेंगे। लेकिन इससे पहले आइए कुछ खबरों को देख लेते हैं। एक दो इम्पॉर्टेंट खबरें हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी आपको मालूम है कि सिंगापुर पहुंच चुके हैं और वो खासकर आसियान और जो दूसरे कई वहां सम्मेलन हो रहे हैं इसी से रिलेटेड इंटर रिलेटेड हैं उन सम्मेलनों में भाग लेंगे। इसकी चर्चा हम लोगों ने कुछ दिनों पहले की थी। जब वो सम्मेलन हो चुके होंगे और उसके जो रिजल्ट्स आएंगे उसके बारे में हम सम्मेलन के संपन्न होने के बारे में के बाद बात करेंगे। फिलहाल इतना ही आपके लिए पर्याप्त है कि प्रधानमंत्री जी की वहां जो बातचीत होगी वो काफी महत्वपूर्ण होगी। उसमें मैं एक तथ्य की ओर आपका ध्यान विशेष रूप से फ्रेंड्स आकर्षित करना चाहूंगा। एक सम्मेलन हमारे प्रधानमंत्री जी करेंगे 4 देशों के साथ, मीटिंग करेंगे कह लीजिए, सम्मेलन नहीं कहना चाहिए, जिसे हम कहते हैं क्वाड। एक बैठक होगी क्वाड, ये बेसिकली 4 देश, क्वाड मतलब 4 से संबंधित है, इसके स्क्वायर से संबंधित है, स्क्वाड को क्वाड कर दिया गया है। उसमें 4 देश भाग लेंगे जिसमें भारत तो है ही, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। आपको मालूम है कि कुछ समय पहले ये ग्रुप बनाया गया था और आप देखेंगे कि ये पूरा का पूरा जो ग्रुप है हिंद प्रशांत क्षेत्र का ग्रुप है, हिंद और प्रशांत महासागर का क्षेत्र है। मैं अपने क्लास स्टूडेंट को स्पेशली याद दिलाना चाहूंगा कि अपने दिमाग में उस इमेज को लेकर के आए कि किस तरह से स्क्रीन पर बकायदे डिटेल में मैंने इसके बारे में आपको समझाया था हिंद प्रशांत पूरे के पूरे क्षेत्र को, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन की दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। और इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि चीन का जो बढ़ता हुआ प्रभुत्व है इस क्षेत्र में उसको रोकने के लिए ये चारों देश चिंतित हैं। तो इनके जो निष्कर्ष होंगे वो हम लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। अब इसकी थोड़ी सी हम लोग प्रतीक्षा करते हैं। जो दूसरी एक इम्पॉर्टेंट खबर है मित्रों की, सबरीमाला मंदिर का मामला आपको मालूम है कि उसमें पर्टिकुलर एज की महिलाओं का प्रवेश निषेध था। सुप्रीम कोर्ट ने बकायदे उसे गलत ठहराते हुए महिलाओं को प्रवेश करने का अधिकार दिया, लेकिन जो पॉलिटी होती है वो अलग तरीके से काम करती है। पुलिस की सुरक्षा तो जरूर प्रदान की गई लेकिन महिलाएं उसके अंदर प्रवेश नहीं कर सकी हैं अभी तक। खैर, वो एक अलग मामला है। तो अब कुछ लोगों ने जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था उसी के अगेंस्ट आप कह लीजिए पुनर्विचार याचिका पेश की है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है उस पर वह फिर से विचार करे। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसे स्वीकार कर लिया है कि हमने जो निर्णय सुनाया है हम उस पर फिर से विचार करते हैं, लेकिन पहले जो उसने डिसीजन दिया है उसे उसने एज इट इज रखा है कि उस पर अभी फिलहाल कोई रोक नहीं है। अब देखिए कि सुप्रीम कोर्ट का अब इस पर क्या निर्णय आता है जो बहुत महत्वपूर्ण बात होगी। तीसरी खबर तूफान से संबंधित है, जो गाजा तूफान के बारे में आपने सुना होगा जो खासकर साउथ में अभी आने की संभावना है, थोड़ा सा एंटर भी कर गया है, देखते हैं कि आगे ये क्या रूप लेता है उसी के अनुसार इस पर फिर हम लोग बातें करेंगे। तो फ्रेंड्स आइए अब हम लोग बात करते हैं मुख्य विषय पर और वो है भारत के लिए पूर्वी एशिया क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए, जब हम भारत के संदर्भ में एशिया महाद्वीप की बात करते हैं तो आप चाइना को तो छोड़ दीजिए, चाइना तो क्योंकि भारत का प्रतिस्पर्धी राष्ट्र ही है। एशिया में जो जापान है वो बहुत डेवलप्ड राष्ट्र है जापान अपने आप में। तो जब भी हम एशिया के साथ इस तरह के छोटे राष्ट्रों के साथ संबंधों की बात करते हैं तो डेफिनेटली इन दो देशों को निकाल देते हैं, जापान और चीन और इतिहास की किताबों में इन दोनों को सुदूर पूर्व के नाम से जाना जाता है, फॉर ईस्ट यानी कि ईस्ट के वो देश जो काफी दूर बसे हुए हैं। बाकी जब हम बात करते हैं एशिया को लेकर के और भारत के संबंध, तो लगभग तीन शब्द आपको खासकर पढ़ने को मिलेंगे। एक दक्षिण एशिया, भारत दक्षिण एशिया में है, राइट। फिर आपको सुनने को मिलता है दक्षिण पूर्व एशिया, तो ये वियतनाम और ये जो छोटे छोटे देश हैं, देखिए दक्षिण पूर्व एशिया आप मैप में देखेंगे तभी समझ पाएंगे, तो दक्षिण पूर्व एशिया हो जाता है। एक हो जाता है पूर्वी एशिया, तो उसमें पूर्व एशिया के पूर्व देश हो जाते हैं। और एक हो जाता है पश्चिम एशिया या मध्य एशिया, जिसमें आपके इधर आप ईरान, अफगानिस्तान और इधर खाड़ी के देशों को उनको आप लेते हैं। तो एक बात आप पाएंगे जो अभी एशिया के देशों की मैंने बात की, अगर हम चाइना और जापान को निकाल दें तो ये जितने भी देश हैं दो मायने में बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, दो मायनों में। इसमें पहला मायने तो ये है फ्रेंड्स कि ज्यादातर देश हमारे पड़ोसी ही हैं। आप देखिए कि आप मैप में देखिए तो इधर आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान को भी एकदम पड़ोस में पाएंगे, इधर जब आप चलते हैं तो फिर इधर नेपाल और इधर भूटान और फिर म्यांमार, और ये पूरा का पूरा एक पड़ोसी देश है। इसके बाद जब साउथ में आप चले जाते हैं, श्रीलंका, मालदीव और साउथ ईस्ट में जब चले जाते हैं तो फिर वियतनाम, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस, ये सारे के सारे ब्रुनोई, ये सारे देश आपको एक जगह मिलेंगे। और थोड़ा सा और आगे चले जाइए तो फिर आपको मलेशिया और सिंगापुर, इंडोनेशिया वगैरह मिलने लगेंगे, इनके नाम आप अक्सर सुनते रहते हैं। तब महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप अपना सिविल सर्विस का सिलेबस उठा करके देखेंगे और अनसॉल्व्ड पेपर, तो एक दो क्वेश्चंस डेफिनेटली पड़ोसी देशों के साथ, जो भारत के संबंध, एग्जैक्ट पड़ोसी देशों के साथ नहीं लेकिन कंपैरेटिवली पड़ोसी देशों के साथ, यानी कि एशिया के जितने भी देश हैं उसमें भारत के जो सबसे निकटतम भौगोलिक दृष्टि से हैं उनके ऊपर पूछे गए प्रश्नों का महत्व ज्यादा होता है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ऐसा, इस बार तो इसराइल पर ही सीधे सीधे भारत और इसराइल के संबंधों पर प्रश्न पूछा गया है, और इसराइल को आप देखें तो बिल्कुल पश्चिम एशिया का एकदम लास्ट का आपको देश मिलेगा, तो इसराइल पर भी एक तरीके से प्रश्न पूछा गया। तो कुल मिलाकर के यह है कि जब आप सार्क देशों का नाम सुनते हैं, जब आप खाड़ी देशों का नाम सुनते हैं, जब आप आसियान देशों का नाम सुनते हैं, आसियान एक संगठन है आपको मालूम है, दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संघ, आसियान, ASEAN, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, तो मान करके चलिए कि संगठन के रूप में भी और राष्ट्र के रूप में भी, यानी कि अगर एक देश के साथ कोई बात हो रही है तो वह भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, और अगर संगठन के रूप में सार्क और आसियान की बात हो रही है तब भी वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए यानी भारत के लिए भी, और डेफिनेटली सिविल सर्विस की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के रूप में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। खासकर इंटरनेशनल रिलेशन के तहत फ्रेंड्स आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा। अब आप देखिए कि भारत के लिए ये देश क्यों इतने महत्वपूर्ण हैं। अब हम थोड़े से राजनयिक दृष्टि से बात करते हैं, डिप्लोमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से। ये अब हम लोग कई बार बात कर चुके हैं कि किस तरीके से चीन लगातार हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपना प्रभुत्व बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, जिसको लेकर के जापान और ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे देश भी चिंतित हैं। और बट नेचुरल है कि अगर वो हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपना प्रभुत्व फैलाना चाह रहा है, जिसे आप इंपीरियलिज्म भी कह सकते हैं, साम्राज्यवाद, सो कॉल्ड इंपीरियलिज्म का विस्तार करना चाह रहा है, तो उसे एशिया के इन छोटे छोटे देशों पर अपनी पकड़ बनानी होगी। अब इसीलिए वो वन बेल्ट वन रोड और ये सिल्क रूट और मैरीटाइम सिल्क रूट इन सब की योजना बना रहा है, और आप देख रहे हैं कि वो लगातार इस पर बहुत तेजी के साथ काम भी कर रहा है और कुछ देशों का उसे सहयोग भी मिल रहा है, लेकिन धीरे धीरे कुछ लोग अब उसके विरोधी भी हो रहे हैं। भारत के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि इस क्षेत्र में यानी कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन बना रहे इसके लिए बहुत जरूरी है कि चीन की जो एक बढ़ती हुई साम्राज्यवादी जो नीति है इसको नियंत्रित किया जाए। तो इस लिहाज से भारत के लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि वो एशिया के जो छोटे छोटे देश हैं इनके साथ अपने संबंधों को ज्यादा से ज्यादा बेहतर करे। जब हम कहते हैं बेहतर करे मित्रों, तो इस बेहतर करे का क्या मतलब है, कैसे बेहतर किया जा सकता है? पहली बात तो यह है कि भारत के पास इतनी ज्यादा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक समृद्धि है इतिहास की, कि इन देशों के साथ संबंधों को मजबूत बनाना उसके लिए बहुत मुश्किल काम नहीं है। क्योंकि जब आप एंशियंट इंडिया पढ़ते हैं तो आप देखिए कि कैसे इन देशों के साथ भारत के व्यापारिक संबंध भी रहे हैं और सांस्कृतिक संबंध भी रहे हैं, तो वो एक सूत्र का काम करता है। दूसरी बात यह है कि ये पूरे के पूरे जो देश हैं ये हिंद महासागर क्षेत्र में है, ज्यादा से ज्यादा आप देखेंगे हिंद प्रशांत क्षेत्र में। जब आप भारत के लिए हिंद महासागर क्यों इतना महत्वपूर्ण है, जब ये पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि भारत का जो विदेश व्यापार है जो ज्यादातर होता है आयात और निर्यात, बट नेचुरल है कि वो हिंद महासागर से होकर के होगा। क्योंकि भारत के दोनों ओर अगर आप देखें, ईस्ट में और वेस्ट में, चलिए भले ही हम उसे अरब की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी और अरब सागर कहते हैं, लेकिन हैं तो वे हिंद महासागर के ही पार्ट। तो ऐसी स्थिति में अगर हिंद महासागर पर चीन का प्रभुत्व हो जाता है या यहां जो छोटे छोटे देश हैं वो भारत के विरोध में खड़े हो जाते हैं, तो बट नेचुरल है कि भारत के लिए एक बहुत बड़ा आवागमन का संकट हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट सिस्टम उसका बिल्कुल दिक्कत में पड़ जाएगी। और फिर यहां भारत को मार्केट भी मिलता है, हमारे भारत के बहुत से लोग इन देशों में जाकर के बसे हुए हैं, और खासकर जो म्यांमार है, आप देखेंगे कि म्यांमार तो बिल्कुल उसे आप आशियान का प्रवेश द्वार कह सकते हैं, कहा भी जाता है आशियान का म्यांमार जो है प्रवेश द्वार है, और जो म्यांमार है वो हमारे नॉर्थ ईस्ट से बिल्कुल सटा हुआ है, और आप जानते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में इंसर्जेंसी की स्थितियां लगातार चलती रहती हैं। आज कल ही आपने न्यूज में सुना होगा कि किस तरह से उस क्षेत्रों के कुछ संगठनों को सरकार ने 5 साल के लिए और प्रतिबंधित कर दिया है, तो लगातार वहां इस तरह की गतिविधियां, राष्ट्र विरोधी गतिविधियां होती रहती हैं। तो अगर हमें वहां शांति चाहिए तो बट नेचुरल है कि हमें इन जो एशिया के छोटे छोटे देश हैं इनके सपोर्ट की बहुत अधिक जरूरत पड़ेगी। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार शुरू से ही लगातार इन्हें सहयोग देने की नीति को अपना रही है, अपनी तरफ से सहयोग देना और अलग अलग क्षेत्रों में इनके साथ सहयोगपूर्ण संबंध बढ़ाना, जिसमें आपको बहुत मिलेंगे, कृषि का क्षेत्र मिलेगा, अंतरिक्ष का क्षेत्र मिलेगा, पर्यावरण का क्षेत्र मिलेगा, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का मिलेगा, ऊर्जा का मिलेगा, पर्यटन का मिलेगा, टेक्नोलॉजी का मिलेगा, कनेक्टिविटी का मिलेगा। इन सारे क्षेत्रों पर में भारत काम कर रही है और उन देशों को मदद देने की हर संभव कोशिश में लगी हुई है, ताकि ये देश कहीं न कहीं भारत के प्रति युग आभार तो नहीं कहना चाहिए लेकिन एक सद्भाव विकसित कर सके कि नहीं, भारत हमारे लिए इतना कर रहा है। और देखिए, ये तो बहुत छोटे छोटे देश हैं, भारत तो इनकी तुलना में बहुत बड़ा राष्ट्र है। तो ऐसे में भारत को एक बीच बीच में डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट भी आते हैं कि बड़े भाई की तरह व्यवहार करना ही चाहिए और इनको अगर इस तरह की मदद की जरूरत है तो वो दी जानी चाहिए, और इस तरीके से भारत इन देशों को कह लीजिए अपने पक्ष में कह लीजिए या सद्भाव के साथ जोड़ना कह लीजिए, उससे उनके साथ अपने संबंधों को बेहतर बना सकता है। तो दोस्तों, ये जो पूर्वी एशिया के देश हैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, और जब भी इन पर कुछ भी आपको पढ़ने को मिलता हो प्लीज आप उसे इग्नोर न करें। तो मुख्य विषय के बारे में फ्रेंड्स बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, आप देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले सभी मित्रों को धन्यवाद देता हूं। इसमें एक मेल है दीपक विश्वास का। दीपक, आपने जो प्रश्न पूछा है उसके लिए इतना ही कहना मेरा पर्याप्त होगा कि आप अपनी समस्या को बिल्कुल समस्या न समझें। आपकी जो समस्या है आपके कहीं भी सरकारी नौकरी में जरा भी बाधक नहीं बनेगी, नॉट इवन 0.001% भी। कुछ दोस्तों के नाम है ईमेल लिखने वालों में, कुलदीप पाल, केशव कुमार चंदन, आप मधुबनी खजौली मधुबनी बिहार से हैं, राज कालपी उत्तर प्रदेश से, स्वाति रानी किरतपुर उत्तर प्रदेश से, साक्षी भूमिका गुप्ता और सौरभ पाठक ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश से, आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।